તારીખ 4/6/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન.
પત્ર 254 ચાલતા સ્વસંદ કે વિષય મેં મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં ભી કૈસે કૈસે પ્રકાર સે જાને અનજાને મેં સ્વસંદ હો જાતા હૈ ઉસકી ચર્ચા કલ ચલી થી. ઓ સ્વસંદ જાને કા સ્વસંદ મિટને કા દો સ્થાન હૈ, यानी दो प्रकार से ऐसा महादोष को मिटाया जा सकता है. सबसे सुगम उपाय तो वो है कि अगर जीवन में कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो उसकी आज्ञाकारिता में रहने से स्वच्छंद नहीं होता. क्यों? वो उस तरह से होता है, आज्ञाकारिता में भी उस तरह से होता है कि मैं मेरी योग्यता को सर्वांग रूप से नहीं जानता. थोड़ी बहुत समझ होती है, थोड़ी बहुत तो समझ होती है, लेकिन सर्वांग योग्यता का अब खुद को पता नहीं होता. इसलिए कब क्या दोष हो जाएगा या स्वच्छंद हो जाएगा वो महादोष है, पता नहीं चलेगा, खुद को पता नहीं चलेगा. तो एक ऐसा विवेक आता है, उसमें निमित्ताधीनपणा नहीं है, ये उपादान का विवेक है. तो जब मैं खुद ही अंधा हूँ तो देखने वाले को साथ में रखना वो मेरे लिए एक सुरक्षित प्रवृत्ति हो जाएगी. क्यों? कि मार्ग से जो अनजाना है वो कदम कदम पर भूल कर सकता है. तो कृपालु देव ने गाथा लिखी है, मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय जाता सदगुरु चरण मा अल्प प्रयास से जाए. अल्प और सुगम से सुगम उपाय तो वो है कि आज्ञाकारिता में रह जाए तो प्राय उस दोष से बच जाएगा. ये सबसे बढ़िया उपाय. दूसरा उपाय इस पत्र में लिखा है वो है कि अपना दोष अपक्षपात रूप से देखने में आवे तो स्वच्छंद हानि को प्राप्त होता है. ये इसका प्रैक्टिकल साइड है. नियम से चलते हुए परिणामों का दोष मुमुक्षु देखता है, आत्मार्थी देखता है, तो उस दोष को वो अच्छी तरह समझ सकता है कि मेरा अभिप्राय इसके पीछे कौन सा था. अब अनेक प्रकार के छोटे मोटे अभिप्राय के विपर्यास इस अवलोकन के काल में सलटते हैं या विपरीतता अभिप्राय की नाश को प्राप्त होती है और स्वच्छंद हानि को प्राप्त होता है. दोष और पक्षपात को देखने से स्वच्छंद स्वच्छंद का नाश होता है या स्वच्छंद की हानि होती है, यानी बहुभाग स्वच्छंद दब जाता है, मिट जाता है। और स्वच्छंद जहाँ थोड़ी या ज्यादा हानि को प्राप्त हुआ वहाँ उतनी बोध बीज योग्य भूमिका होती है। यह एक मार्मिक बात यहाँ पर लिखी गई है। आत्मा जिसका बोध होने से, आत्मस्वरूप के जिसका बोध होने से जीव निर्वाण पद को प्राप्त होता है, वो बोध होने के पहले, बोध प्राप्त होने के पहले इसका बीज बोया जाता है। उस बोध बीज को कहते हैं स्वरूप की पहचान। उस स्वरूप की पहचान होने की योग्यता चाहिए। केवल ये बुद्धि का विषय नहीं है, वैसे तो सब हम संगनी पंचेंद्रिय प्राणी हैं, लेकिन उसमें योग्यता चाहिए, निर्मलता चाहिए। और मलिनता दोषों से होती है। जो मलिनता है वो तो दोष के कारण से है। अपने अवलोकन से दोष के निकालने के लक्ष्य से जब दोष को आधार नहीं मिलता है, दोष निराधार हो जाता है, तब दोष जाने की तैयारी हो जाती है। दोष तो तब तक रहता है कि हम ही उन्हें सपोर्ट करते हैं अंदर से। मेरा दोष है, नहीं नहीं नहीं, अगले का है। मुझे कसाई जरूर हुआ, मेरे परिणाम जरूर बिगड़े हैं, लेकिन कारण उनका है। जहाँ तक ये बात रहती है वहाँ तक दोष को हम ही रखने चाहते हैं। दोष होने में हमारी ही अनुमोदना पहुँचती है, पर हम अनंत शक्ति के धारक हैं। जब दोष को रखने वाला अनंत शक्ति वाला है तो वो दोष जाएगा कहाँ से, कौन उसको निकालेगा? तीर्थंकर भी समर्थ नहीं है, इनके दोष निकालने को तीर्थंकर भी समर्थ नहीं है। जब आत्मा अपना आधार निकाल लेता है कि किसी कीमत पर मुझे निर्दोष हो जाना है, परिपूर्ण निर्दोष हो जाना है, दोष का एक कण भी मुझे नहीं चाहिए, तब ये दोष का आधार देने का छोड़ देता है। उसको निषेध आता है, कड़ा निषेध आता है, तब दोष निराधार हो जाते हैं। वो मलिनता हानि को प्राप्त होती है, तब निर्मलता जो आती है आत्मा की दशा में, वो भूमिका बोध बीज योग्य भूमिका है। जहाँ दोष रखने का बिल्कुल अभिप्राय नहीं और पूरा का पूरा दोष मिटाने का ही अभिप्राय रहा, तब बोध बीज योग्य भूमिका होगी, क्योंकि उतना स्वच्छंद है वो हानि को प्राप्त हुआ है। यहाँ तो बहुत मार्मिक बात वो है कि जहाँ स्वच्छंद हानि को प्राप्त हुआ, जितने पैमाने में, उतनी बोध बीज योग्य भूमिका होती है। उस स्वरूप को पहचानने में योग्यता वाला हो रहा है। जितनी प्रैक्टिस, जितना प्रयोग चला, उतना उसको बोध बीज के समीप जाने का अवसर आएगा। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है जो मुमुक्षु को चाहिए कि लगातार करता रहे। दोष मिटाने का रामबाण इलाज है ये, और थोड़ा ही प्रयोग चलने से इसकी प्रतीति आ जाएगी, विश्वास जम जाएगा कि वाकई यही दोष मिटाने का वो इलाज है, सच्चा इलाज यही है, और वो अपने वश का भी है, वो इलाज अपने वश का भी है। ऐसी बोध बीज योग्य भूमिका कुछ हिस्से में तैयार होने के बावजूद भी, यानी स्वच्छंद जहाँ प्राय दबा हुआ है, बहुभाग स्वच्छंद मिटा है जिसका, वहां पीछे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तीनों करके मोक्ष मार्ग होता है, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ये सूत्र है प्रसिद्ध अपने आगम का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। उसको रोकने वाले तीन कारण मुख्य करके होता है ऐसा हम जानते हैं। क्या लिखते हैं ये हम जानते हैं वो बात लिखते हैं, यानी हमारा अनुभव इस विषय में बोलता है कि मुमुक्षु को प्रायः स्वच्छंद दबा हो, ऐसे मुमुक्षु को मैंने कुछ आगे बढ़ा है, वेदना आ गई है, पूर्णता का लक्ष्य बंधा है और अवलोकन का प्रयोग चल रहा है, और इसके फल स्वरूप स्वच्छंद भी दबा हुआ है और उसको आत्मा की पहचान होने की योग्यता भी थोड़ी बहुत तैयार हुई है, फिर भी मार्ग प्राप्ति नहीं हो रही है। इसके तीन मुख्य कारण हैं। वो तीन कारण की बात, इस तीन कारण की चर्चा इस पत्र में अब करेंगे कि ऐसे कौन से तीन कारण हैं। कि इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, बहुभाग तो कहीं सुख नहीं लगता हो, लेकिन कहीं न कहीं अभिप्राय की भूल रह गई है, इसकी विशेष विस्तार से चर्चा तो करेंगे। एक तो वो कारण है, दूसरा कारण कि सत्पुरुष के प्रति परम विनय आना चाहिए, उसमें कमी रहती हो। विनय का सवाल नहीं है, विनय के कमी वाले की बात है। इधर जिसको विनय नहीं होता है उसकी तो ये योग्यता होती ही नहीं, उसकी चर्चा भी यहाँ नहीं है, इस भूमिका वाले की बात यहाँ नहीं है। लेकिन जो आगे बढ़ा है और विनय भक्ति करता है, उनको भी कमी होती हो, कमी हो तो एक प्रकार की क्षति है, इसके कारण भी इसकी योग्यता आगे नहीं बढ़ते, मार्ग प्राप्ति में अवरोधक है। और तीसरा कारण है
परम दिनी निवेशन के कारण बदले परम दिनी का निवेशन साने मरे को बहुत देर
एक ही बात है, क्योंकि फुटनोट में वो बात दिया है तो वो भी मिलता है पाठांतर में, परम विनय की कमी। विनय में दीनता होती ही है, वो तो शब्दांतर है, भाव में कोई फर्क नहीं। परम विनय कहो या परम दैनत्व कहो, एक ही बात है। परम दैन्यता कहो या परम विनय कहो, बात तो एक ही है, वो कोई अंतर नहीं है। दैन्यत्व में नम्रता विशेष है, विनय में भी नहीं, नम्रता तो है ही। उसकी तो चर्चा करेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट वही है और उसमें लिया भी है कि एक तो स्वरूप निश्चय नहीं होने से मैं परमानंद स्वरूप हूँ, वो बात उसके भाव भाषण में आई नहीं, इसलिए जो आत्मा का आनंद की आसक्ति होनी चाहिए भीतर में वो नहीं हुई। और बाहर में बहुभाग को ये बात रहती है ज्यादा करके पूर्णता के लक्ष्य के पहले रहती है, वो क्यों लिखा है कि ज्ञान दशा के पहले ये बात रह जाती है, क्योंकि ज्ञान दशा में आत्मा का आनंद आता है, इसके पहले तो आता नहीं, इसलिए रहना संभव है। जहाँ तक हमने हमारे आत्मिक आनंद का स्वाद नहीं लिया, आस्वाद नहीं आया, वहाँ तक उसका जो अट्रैक्शन आसक्ति होनी चाहिए वो होना मुश्किल है। जब वो नहीं है तो कहीं न कहीं सुखेच्छा, सुख लेने की इच्छा हो जाती है, यानी अभिप्राय में रह जाती है। इसका क्या करें, वो सवाल हो सकता है कि इसका क्या करें। तो बहुत बारीक अवलोकन चाहिए, बहुत सूक्ष्म अवलोकन चाहिए अपने परिणामों का, और उसमें भी एक नज़र चाहिए कि जहाँ भी मुझे सुख लगा वहाँ मेरा अभिप्राय था कि नहीं था। जैसे ये गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में ठंडी हवा अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी नहीं लगती है, तीव्र गर्मी होती है तो अच्छी तो नहीं लगती, फिर भी वो तो कुदरत की व्यवस्था है, गर्मी के दिन में तो गर्मी ही पड़ेगी, गर्मी रहेगी वातावरण में। अब उस वक्त ज़्यादा गर्मी हो, उस वक्त भी कोई ठंडी हवा आई, या तो एसी के कमरे के कारण से आई या तो कोई हवा के कारण से आई, कुछ भी हो, या हम हिल स्टेशन चले आए, अच्छापन लगा कि नहीं, तीव्र सुख नहीं है, ये अल्प सुख की बात लिया है, तीव्र सुख की इच्छा की बात नहीं लिया है, क्योंकि मुमुक्षु आगे बढ़ा हुआ है तो उसको तीव्रता नहीं आती। वो अच्छापन लगा इसका उतना दोष नहीं है, जितना अभिप्राय पूर्वक लगा हो इसका दोष है। देखिए, एक अपने परिणामों की जांच तलाश करने के लिए एक बात रखता हूँ, कि जहाँ जहाँ हमको सुखानुभव होता हो, जिस प्रसंग में हमको सुख का अनुभव होता हो, हमारा उस अनुभव के पहले सुख का निश्चय वहाँ हुआ है या अनादि का सुख का निश्चय बदला हुआ है, उसकी जांच तलाश हमको कर लेनी चाहिए। वो निश्चय है, वो प्री कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्ट है, वो विपरीत अभिप्राय है। गर्मी में ठंडापन अच्छा लगे वो उतना दोष नहीं है, जितना निश्चय पूर्वक अभिप्राय पूर्वक लगे उतना दोष है, तो बड़ा दोष। जैसे हमको कहीं भी अच्छा लगा, खाने में, पीने में, हवा में, कहीं भी, पंचेंद्रिय के किसी विषय में, तो वो अच्छा लगा, वो एक दोष तो है ही, क्योंकि कोई प्रद्रव्य तो अच्छा बुरा नहीं है, फिर भी हमको लगा। लगा उसके पीछे हमारा ऐसा निश्चय था कि नहीं था, वो देख लेना चाहिए। निश्चय पूर्वक लगेगा, रस आए बिना रहेगा नहीं, और अभिप्राय बदला हुआ होगा तो निषेध आए बिना रहेगा नहीं। तो अवलोकन वाला दोष अपक्षपात रूप से अवलोकन करता है, तभी उसको ये पता चलता है। दोष का पक्षपात वाले को अपना विपरीत अभिप्राय का कभी पता नहीं चलेगा। और कई लोग तो ऐसा बोलने लगते हैं कि हम वितराग तो हुए नहीं पूर्ण, जब हमारे में वितरागता आई नहीं तो ये तो राग हो ही जाएगा, हमारी भूमिका का राग, हमारी भूमिका में तो ये राग होता ही है, हम तो मुमुक्षु की भूमिका में हैं। ज्ञानी को भी छोटे मोटे राग होते हैं, तो मुमुक्षु को तो हुए ही हुए। ये अभिप्राय गलत है। ज्ञानी को राग होता है, वो राग का निषेध भी साथ साथ होता है। अगर तुमको ज्ञानी का रास्ता पकड़ना है तो ज्ञानी निषेध करते हैं, तुम निषेध नहीं करते, तुम अनुमोदना कर रहे हो, उल्टा रास्ता है ऐसा। ज्ञानी का आधार लेना ये और एक बड़ा अपराध है। तो उस प्रकार से तो बचाव तो नहीं करना चाहिए, लेकिन निषेध सहज आना चाहिए। अगर हमको पूर्ण शुद्ध होना है तो निषेध आए बिना रहेगा नहीं। हमारी भावना परिपूर्ण शुद्ध होने की है या कुछ अशुद्धता मलिनता रखने की भी है कि नहीं? आदर्श तो पूरा ही होता है, आदर्श अधूरा नहीं हो सकता कभी। पर ये जब हमारी भावना का विषय है तो भावना हमेशा कोमल होती है। भावना विरुद्ध परिणाम होगा, भावना को ठेस पहुंचे बिना रहेगी। सहज जागृति कैसे रहती है इसका यही कारण है। क्यों कि बहुभाग मुमुक्षु को तो यही शिकायत है कि क्या करें, हमारी जागृति नहीं रहती, हम क्या करें, दोष हो जाता है, हमारी जागृति रहती है। कारण यही है कि हमारी भावना निर्दोष होने की हुई नहीं। अगर हमारी सही भावना होती, यथार्थ भावना होती, तो भावना के विरुद्ध परिणाम होते ही भावना को ठेस पहुंचती है और मुमुक्षु अलर्ट हो जाता है, मुमुक्षु जो है वो जागृत हो जाता है। ऐसा सतर्कपना भावना के कारण से आए बिना नहीं रहता। इसलिए देखना है, और चर्चा करेंगे इस विषय में। तीसरा कारण है पदार्थ का अनिर्णय, मैंने अपना स्वरूप का निर्णय नहीं होना, निश्चय नहीं होना, पहचान नहीं होना, भाव भाषण नहीं होना। एक ही स्टेज के ये वाचक शब्द है, यह स्वरूप का लक्ष्य नहीं है, यह स्वरूप का अस्तित्व ग्रहण नहीं होना, सब एक ही बात है। या बोध बीज नहीं होना, इसको बोध बीज भी कहते हैं, बोधि बीज भी कहते हैं, बीज ज्ञान भी इसको, उस सम्यक ज्ञान का बीज होने से उसको बीज ज्ञान भी कहने में आया है। स्वानुभूति का ये बीज है, स्वरूप की पहचान ये स्वानुभव का बीज है, इसलिए उसको बीज ज्ञान भी कहते हैं। ये तीन कारण नहीं होने से, तीन कारण के वसात जीव को मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। ये तीन कारण मार्ग प्राप्ति को रोकने वाला है, रोधक है, अवरोधक है। इस तीन कारण की चर्चा भी यहाँ करेंगे। ये सभी कारणों के नाश करने का, टालने का बीज एक है, टालने का बीज भूत उपाय एक है, वो तो हम बाद में कहेंगे। क्या लिखने की व्यवस्थित सिस्टम है, पहले क्यों नहीं कहते, वो बात पहले कह दो ना, क्योंकि नहीं, पहले तो तीनों की हम चर्चा करेंगे। वहां तक आप जिज्ञासा में रहो, सस्पेंस में रखते हैं, जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, तीव्र करते हैं, क्यूरियोसिटी को उत्पन्न करते हैं, क्या बात होगी, क्या बात होगी, क्या बात होगी, वो तो बाद में कहेंगे। परंतु उसके पहले वही कारणों की अधिकता से कहते हैं, वही कारणों को अधिकता से कहते हैं कि इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, यह बहुत करके तो तीव्र मुमुक्षुता में ज्ञान दशा की उत्पत्ति के होने पहले होती है, क्योंकि आनंद का अनुभव नहीं हुआ। इस होने का कारण वो है कि अनुभव पूर्वक निशंक रूप से आत्मा सत परमानंद रूप है, वो दृढ़ नहीं होता, दृढ़ हुआ नहीं, यही कारण है।
अस्थि में से तो निकला, अस्थि में से तो निकला, अस्थि नहीं तो नहीं,
अस्थि नहीं आई तो नास्ति में से पूरा निकला कि नहीं निकला, ये एकदम सूक्ष्म अवलोकन से देखने की चीज हो जाती है। इट्स अ मैटर ऑफ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। एकदम, क्योंकि सूक्ष्म अभिप्राय को पकड़ना है, कहाँ कहाँ सुख लगता है और इसके पीछे मेरा अभिप्राय है या नहीं है। क्या लिखा कि ऐसा होने का कारणों में निशंकपने से मैं सत हूं ऐसा दृढ़ नहीं हुआ है, यानी अपनी शाश्वतता ग्रहण नहीं की। शाश्वतता ग्रहण नहीं करने नहीं होने से और शाश्वत जो वर्तमान आयु है, वर्तमान जीवन है, उसमें आखिर तक अनुकूलता बनी रहेगी या नहीं, आधार बुद्धि सुख के लिए, सुख के कारणों की आधार बुद्धि वो अभिप्राय की बुद्धि, उसको चेक करना पड़ता है। एक तो सत शब्द लिया है, अथवा मैं परमानंद रूप हूं, मैं परमानंद रूप ही हूं, अनंत आनंद का पिंड मैं हूं, ऐसा भी निश्चय नहीं हुआ है। वो पहचान के काल में होता है। वो निश्चय कब होता है? पहचान के काल में हो जाता है, होता है। भी थोड़ा मंद हुआ है, पात्रता ही है, आगे बढ़ा है ना, तो ठीक पना लगता है। कहते हैं कि ये बात सूक्ष्म तौर से अभिप्राय का संतुष्ट पना है, वो जीव को रोकता है, माही रोकता है। जैसे कोई पैदल चलने वाला गर्मी के दिन में थक गया, एक अच्छा घटादार वृक्ष की छाया मिली, मन हुआ कि यहां आराम कर लूं, सोया और सोया और रात हो गई, शाम हो गई, जंगल में रह गया। ऐसी रुकावट मुमुक्षु की भूमिका में कषाय की मंदता के कारण से और ज्ञान के क्षोभ से कुछ समाधान वर्तता है इसके कारण से रहती है, तो मुमुक्षुता में भी कुछ आनंद अनुभव में आता है। उसके कारण से बाह्य साता के कारण भी या अनुकूलता के कारण भी कभी प्रिय लगता है कि ठीक है इतनी तो अनुकूलता है। वो तो अपना परिणाम को सबको अलग अलग है, उसको भी अपना परिणाम देखना चाहिए कि हमको कौन से अनुकूलता ठीक लगती है। हरेक को अपेक्षा वृत्ति अलग अलग रहती है, देख लीजिए प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा वृत्ति अलग अलग है, पूरी अपेक्षा की पूर्ति वही उसकी अनुकूलता है। किसी को कुछ खाने की तो किसी को कुछ पहनने की, किसी को कुछ देखने की तो किसी को कुछ सुनने की, कहीं न कहीं अपेक्षा में वो अपेक्षा की पूर्ति होते प्रियपना अच्छापन लगता है। ये मिठास, उस वक्त जो मिठास का अनुभव है वही जहर है। वो बात समझ में होनी चाहिए, वरना मुमुक्षु भी रुक जाएगा ज्ञान दशा की प्राप्ति करने में। उनको कितना समय लगेगा भगवान जाने। नहीं, ये अभिप्राय में भी सूक्ष्म भूल रहती है। अभिप्राय में भूल नहीं लगी तो जहर लगेगा।
सूक्ष्म अभिप्राय कैसे
देखिए, मुमुक्षु अगर कुछ आगे बढ़ा है, मैंने पूर्णता का लक्ष्य हुआ हो और अपना अवलोकन चलता हो, तब उसे क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्न अपना उठा लें। ठीक है कि उसको पूरी ताकत से, पूरे उद्यम से भीतर में अपना काम करने के पीछे पड़ जाना चाहिए। तो उसमें वो बात लगेगी कि अरे यहाँ अच्छापन लग गया, ये जहर अब मुझे नहीं खाना है, ये जहर अब मुझे नहीं खाना है, उतना सतर्क हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी नहीं हो सकते कोई, इसके पहले रास्ता बहुत बारीक है। भले ही अविरत सम्यक दृष्टि त्यागी नहीं होता है, लेकिन मुमुक्षुता में क्या क्या होता है तब ज्ञानी होता है, वो एक समझने की चीज है कि अपने परिणामों की जो परिस्थिति है उसमें उतना बारीक अवलोकन करता है कि कहीं भी वो मिठापन का, मिठास का जहर खाना नहीं चाहता है। बहुत यत्नशील उद्यमवंत होता है, लगातार पड़ जाता है पीछे, ऐसा पुरुषार्थ अंदर में होता है, तब ज्ञान दशा की बारी आती है। ठीक है, अपने को कोई आदि व्याधि उपाधि आजकल नहीं है, ऐसा नहीं चलता है, तो 22-7 में ठीक पड़ा नहीं लगना चाहे जितनी अनुकूलता हो या चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, मेरे लिए दोनों उपसर्ग हैं, अनुकूलता भी उपसर्ग। वो जब लगता है तब ये इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा वाला दोष नहीं रहता, वरना ये दोष रहता है वो मार्ग प्राप्ति को यानी ज्ञान दशा को उत्पन्न होने में बाधक है, रोधक है। देख लेना चाहिए कि ऐसा पुरुषार्थ चलता है कि नहीं। रात्रि दिन इसके पीछे पड़ जाए और छोटे मोटे उदय में कहीं भी रुके नहीं, गौण कर दे, और यही इस लोक की अल्प भी सुखा सुखेच्छा की विद्यमानता को दर्शाता है, बतलाता है। और इस कारण से जीव की योग्यता रुक जाती है, आगे बढ़ने की योग्यता रुक जाती है। इस मुद्दा को लेकर के अपना अवलोकन अधिक सूक्ष्म हो जाना चाहिए, बारीक हो जाना चाहिए। और इस विषय में पूरा उहापोह करके, पूरी चर्चा करके, स्पष्ट करके उसको निकाल कर, उसका निकाल कर देना चाहिए। तो इसकी चर्चा कब होगी कि अपना सूक्ष्म अवलोकन चलेगा तब। वैसे तो प्रयोग की भूमिका में प्रयोग करने वाले को तो चर्चा करने का ज्यादा कारण नहीं बनता, उनको अपनी भूल का, अपनी समस्या का समाधान अंदर से मिल जाता है। जैसे रोटी बनाने वाले बनाने का सीख जाता है। एक दफे बेलन फिराया और पूछता नहीं है कि दूसरी दफे कैसे घुमाऊं या तीसरी दफे कैसे घुमाऊं। घुमाता जाएगा, देखा कि रोटी बराबर नहीं बन रही है, फिर से उसको वो करके फिर प्रैक्टिस करेगा, फिर भी ठीक नहीं बनी और प्रैक्टिस करेगा। उनकी प्रैक्टिस ही उसको सिखाएगी कि कैसे घुमाना है। इस तरह से ये भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये ग्रंथ का नॉलेज नहीं है, पुस्तक का ज्ञान नहीं है। पुस्तक पढ़ने से वो बात समझ में नहीं आती, खुद ही प्रैक्टिस करे और करते करते आगे बढ़ता जाए। सभी उदय में, चाहे अनुकूलता का हो चाहे प्रतिकूलता का, सभी उदय में पुरुषार्थ करने की बात है। और कैसा अविरत, सतत, निरंतर, पूरा जीवन बदलना है। ज्ञान दशा के प्राप्ति में क्या होता है कि पूरा जीवन बदल जाता है, परिणमन बदलता है, मतलब जीवन बदलता है। जो मिथ्यात्व दशा में जो परिणमन था, वो पूरा का पूरा परिणमन, मोक्ष प्रति के गमन करने वाला परिणमन हो जाता है। तो उसके पीछे जो उद्यम है, पुरुषार्थ है, वो भी कोई सामान्य बात नहीं है। हम एक बच्चे को 20 साल की उम्र के बाद पेट भरने के लायक बनाते हैं, तो 15-17 साल तो उसको स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाई में निकालते हैं। तब वो क्लर्क होता है 20 साल की उम्र में, ग्रेजुएट होता है या बीए बीकॉम होता है, क्लर्क का पोस्ट मिलता है, 2000-1500 की नौकरी करके पेट गुजारा करें। इसके लिए 15-17 साल हमको तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ तो निर्वाण पद का हमको, हमारा बड़ा इतना अचीवमेंट है, फिर भी 15-17 महीने की भी यहाँ लंबा पीरियड की जरूरत नहीं है। कुछ महीना, 2 महीना इतना लगातार परिश्रम करो, कितना महीना दो महीना के लिए इतना लगातार परिश्रम करो, अंदर में उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, आश्चर्यजनक इसका परिणाम आएगा। लेकिन पीछे पड़ जाना चाहिए, बीच में दूसरी बात नहीं चाहिए। यहाँ भी रस लिया, वहां भी रस लिया, वो बात नहीं चलती। और इतना बड़ा अचीवमेंट है तो करना में करने में क्या आपत्ति है। वैसे हम व्यापारी लोग, बड़ा लाभ होता है तो आगे पीछे देखते नहीं है, देखते क्या है? रात दिन नहीं देखते, ठंडी गर्मी भी नहीं देखते, भूख तरस भी नहीं देखते। बड़ा मुनाफा होता है तो क्या देखते, कुछ नहीं देखते। तो ये तो इतना बड़ा है, परमानेंट सॉल्यूशन है, हमेश का सादी अनंत काल का एक निवेड़ा आ जाता है। तो इसके पीने पीछे हम 6 महीने की भी बात नहीं है, 1-2 महीना लगातार प्रयोग करने से फिर आगे का काम सहज हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा प्रयोग, सहज चलता रहेगा और 4-6 महीने में तो काम हो जाएगा। तो मैक्सिमम पीरियड है वो, तो इतना जिनेंद्र देव का मार्ग सुविधा वाला है, लौकिक कार्यों की सुविधा से भी अधिक सुविधा है इसमें। अपनी तैयारी होनी चाहिए। जगत इष्ट नहीं आत्म थी, मध्य पात्र महाभाग्य। सारा जगत को गौण कर दे एक दफे तो उतना मूल्यांकन होना चाहिए। ये स्वाध्याय तो मूल्यांकन करने के लिए, ये सत्संग मूल्यांकन करने के लिए है। सही मूल्यांकन आएगा तो ये आत्मकल्याण का कार्य टॉप प्रायोरिटी में आ जाएगा। ये हम लोग इकट्ठे होते हैं उसमें ये जो चर्चा चलती है, एक सही मूल्यांकन आने के लिए है। इसकी हद उतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। इस हद का कार्य, मैंने मूल्यांकन आने का कार्य संपन्न हुआ तो हमारा काम हम टॉप प्रायोरिटी से करने के लिए उद्यमशील प्रयत्नशील हो जाएंगे। क्यों, जीव का स्वभाव है कि लाभ देखते ही दौड़ने लगता है, उसको दौड़ाना पड़ता नहीं है, तो दौड़ने लगता है, सबसे आगे जाएगा वो कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं, किसी के नहीं देखेगा। बाजार में दुकान लगाने वाला क्या देखता है कि इस गांव में तो हजारों दुकान है, इस सिटी में तो 500,000-2,000 दुकान है, मेरा नंबर कैसे लगेगा ऐसा दिखता है, मैं तो पीछे से दुकान लगा रहा हूँ। अरे पीछे से लगा रहा हूँ लेकिन सबसे आगे निकल जाऊंगा। ख्वाहिश तो वही है, संसार के कार्य में उत्साह से प्रारंभ करता है, इससे अनेक गुणा उत्साह से ये परमार्थ के कार्य में प्रारंभ करना चाहिए। कभी काम होगा। मुमुक्षुता में भी कितना का आनंद अनुभव में आता है, वो कब बनता है? दो बात होगी, एक तो पहले जितना कषाय तीव्र होता था वो अभी होगा, होता नहीं है, वो उनको मालूम है। आगे बढ़ा है ना तो सुधार तो आया है, अनजाने में भी इसका संतुष्टपना आया, ये एक बहुत बड़ी अभिप्राय की भूल हो जाएगी। लाल बत्ती है इस जगह पे, तो चेक करना पड़ता है, देख लेना पड़ता है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। हमारी नजर हमारे पूर्व काल भूतकाल में गई कि पहले तो ऐसा बहुत हो जाता था, अब नहीं हो रहा है, ये दृष्टि गलत है। हालांकि वो सत्य है फिर भी गलत है। सत्य होने से तो ठीक है, यथार्थ है वो बात नहीं है। सत्य होने पर भी ऐसा ऐसा विचार, ऐसा अभिप्राय तो सरासर गलत अभिप्राय है। हमारा लक्ष्य अगर पूर्णता का है तो वो बात नहीं आनी चाहिए कि हमारा इतना सुधार हुआ है, हमारा बहुत बाकी है। इसका असंतुष्टपना हमको आगे बढ़ाएगा। संसार में क्या करता है, कितना भी पैसा आ जाता है तो क्या देखता है, मेरे से वो ज्यादा है, इससे आगे मुझे जाना है, मेरा भाई आगे बढ़ गया, मेरा भतीजा आगे बढ़ गया, मेरा वो आगे बढ़ गया, मेरा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ गया, मेरा बाजार वाला आगे बढ़ गया, मेरा वो आगे बढ़ गया, इससे मैं आगे आगे जाना है। आगे वो देखता ही नहीं, नहीं आया वो ही देखता है, पर तभी तो दौड़ लगाता है। यहां भी यही पद्धति से काम होता है, इसलिए आनंद अनुभव आता है, वो बात होती है। और कहीं भी बाह्य अनुकूलता में प्रियता लगे उसके पीछे का अभिप्राय बहुत सूक्ष्मता से जांच तलाश होकर के उसका सुधार हो जाना चाहिए, वरना अनजाने में जीव कितना जहर पीता है उनको खुद को पता नहीं चलता है। और खास करके जिस चीज की अपेक्षा हुई, इच्छा हुई और उस चीज की प्राप्ति हुई, खा लिया जहर, कोई प्रकार है मुमुक्षुता में से, उच्च कोटि की मुमुक्षुता प्राप्त करने का कोई प्रकार है, वो प्रकार ऐसा बहुत सूक्ष्मता से आगे बढ़ने का है, बहुत पुरुषार्थ का। अब जो स्टेज है वो पुरुषार्थ का स्टेज है, जहां तक मूल्यांकन करने के लिए स्वाध्याय करते हैं वहां तक पुरुषार्थ का स्टेज नहीं आया है, लेकिन मूल्यांकन होने के बाद तो पुरुषार्थ का स्टेज है। वो पुरुषार्थ बराबर चलना चाहिए, उसमें लगातार अगर पुरुषार्थ नहीं चला तो कहीं न कहीं हम रुके हुए हैं, निशंक रूप से रुके हुए हैं, और वो रुकावट हमें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए।
बराबर,
ये हमारा अभिप्राय साफ साफ होना चाहिए, तभी तो काम होगा, वरना आगे बढ़ना नहीं होगा। और आगे बढ़ना लंबे काल तक नहीं होगा तो डेंजर पॉइंट आया समझो, ये डेंजर जोन है। रोग चालू रहता है तो डेंजर जोन में प्रवेश करता है, डेंजरस पोजीशन में नहीं आना है, काम कर लेना है तेजी से। इस तरह से इस विषय में अगर कोई विशेष बात करनी हो तो रात्रि चर्चा में लेंगे, फिर आगे कल के साथ में चलेंगे।
Oh, God.